ओम शांति। एक बार चार भिक्षुकों ने, सन्यासियों ने सोचा, हम दो हफ्ते तक मौन में रहकर मेडिटेशन करेंगे। तय हुआ और मेडिटेशन में लग गए, मौन में मौन व्रत धारण कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जब मेडिटेशन कर रहे थे तो कैंडल सामने रखते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कैंडल बुझ गई। तो जैसे ही कैंडल बुझ गई तो एक सन्यासी ने कहा, अरे कैंडल बुझ गई। दूसरे ने कहा, आपको पता नहीं हमारा मौन व्रत है। तीसरे ने कहा, आप नियम का उल्लंघन क्यों किया दोनों ने आपने। और चौथे ने हंसकर कहा, मैंने तो नियम का पालन किया। कुछ ऐसा ही चल रहा है। हम लोग मौन में रह रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो पहले फिर और एक स्टोरी सुन लेते कि मौन का महत्व क्या है। और ये आपकी चिर परिचित जानी पहचानी स्टोरी है, लेकिन उसको आज फिर से हम रिवाइज करते हैं। स्टोरी क्या है कि किसान की घड़ी घूम गई है, और वो घड़ी इतनी कोई कीमत के हिसाब से बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं है, लेकिन भावनात्मक रीति से उससे बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उपहार रूप में उसे प्राप्त हुई थी। तो भावनात्मक रीति से उससे बहुत जुड़ा होने के कारण उसको ढूंढता है कि मुझे ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अपनी कोशिशें कर लेता है लेकिन उसको मिलती नहीं। फिर आसपास में जो बच्चे होते हैं उनको बताता है कि बच्चों देखो मेरी घड़ी गुम हो गई है, और जो भी खोज कर देगा उसको 100 रुपए का इनाम मिलेगा। इनाम सुनते ही बच्चे तो खोजने लग गए, जहां जहां खोज सकते थे, कमरा आंगन बाड़ी जहां जहां भी चांसेस थे वहां सब जगह जाकर आए, लेकिन कहीं पर भी उनको घड़ी मिली नहीं। और निराश होकर किसान से कहा कि नहीं मिली दादाजी, हमें नहीं मिली। इतने में उसी बच्चों के ग्रुप में से एक बच्चा कहता है, दादाजी मुझे एक अवसर देंगे, मैं अकेला ही शांति से ढूंढ कर आऊंगा। तो दादाजी कहते, भले जाओ, वैसे भी तो मिल तो नहीं रही, और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। ये बच्चा गया वापस उन्हीं जगह पर जहां पर पहले झुंड का झुंड गया था, उन्हीं सब जगह पर गया और घड़ी लेकर आया, दादाजी के हाथ में थमाई। दादाजी के तो खुशी का पारा नहीं रहा, लेकिन पूछा कि तुमको घड़ी कहाँ मिली और कैसे मिली। कहा, दादाजी मैं जाता था जहां जहां मार्जिन है वहां पर जाके पहले तो मैं सबसे पहले आपके कमरे में ही गया, क्योंकि चांस थे कि आपने कमरे में छोड़ी हो। तो मैं आपके कमरे में जाकर 15 मिनट एकदम साइलेंस में बैठ गया, किस दिशा से आवाज आ रही है उस पर ध्यान केंद्रित किया, और पता चला कि जो आवाज आ रही है आपके अलमारी के पीछे से नीचे से कहीं से आवाज आ रही थी, और मैंने वहां जाकर उसको खोजा, घड़ी मिल गई। समझ में आया मौन का महत्व? हाँ, जिस शांति को, खुशी को, प्रेम को हम बाहर ढूंढ रहे, बाहर है नहीं, है अंदर। पर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अनुभव नहीं हो रहा है, मिल नहीं रही है। पर क्यों नहीं मिल रही है? बच्चों का झुंड गया, नहीं मिली थी ना, क्योंकि शोर शराबा करते हुए जा रहे थे। लेकिन एक बच्चे ने ठाना कि मैं शांतिपूर्वक जाके खोजूंगा और घड़ी मिल गई। तो मौन का इतना इंपॉर्टेंस है। आत्मा स्वयं में भरपूर है, पवित्र है, ज्ञान से युक्त है, शांति से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है, शक्ति से भरपूर है, पर आज हमें वो मिल क्यों नहीं रहा, अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? शोर गुल बहुत है और इसीलिए मौन की जरूरत है। मौन कई तलों पर होता है। बचपन में हमने स्टैचू खेला ना सबने, तो उसमें स्टैचू में क्या करते थे, शरीर का मौन होता था कि जैसे ही मैंने स्टैचू किया आपको, आप जिस भी कंडीशन में हो वैसे ही स्टैचू की तरह खड़े हो जाओ। तो ये वहां शरीर को निश्चेष्ट अवस्था में, तो शरीर का मौन। फिर दूसरा मुख का मौन। ये बच्चे जब बहुत आवाज करते हैं खाना खाते समय, बेटा चुपचाप चुप करके खाओ, मुख का मौन। उसके बाद आता है मन का मौन और उसके बाद आता है बुद्धि का मौन, उसके बाद आता है अहंकार का मौन और उससे सदता है चित्त का मौन। और जब चित्त का मौन सदता है तो आत्मा की सारी क्वालिटीज मैं स्वयं भी अनुभव करती हूं और मुझसे रेडिएट भी होती है। मन का मौन माना, मन का मौन माना कलियों की या इंद्रियों से संबंधित जो विचार हमारे अंदर चल रहे हैं उसको साइड में रखकर अतीन्द्रिय सुख वाले विचार चले। बुद्धि का मौन, बुद्धि कैसे शुद्ध होगी, ये मन की शुद्धि हो जाएगी, ये वाला मन का मौन करेंगे तो, कि जो कलुषित विचार आ रहे थे उसको हमने किस में कर दिया कन्वर्ट, श्रेष्ठ विचारों में, शुद्ध विचारों में। तो ये हो गई मन की शुद्धि। और बुद्धि की शुद्धि होगी कि बुद्धि में दिव्य ज्ञान को हम भरें। और अहंकार की शुद्धि, तो दिव्य ज्ञान भगवान हमें दे रहा है और इसीलिए क्यों महत्व है कि बार बार आप यहां आए हो तीन दिन से, आपके पास जो भी स्पीकर ने जो भी टॉपिक के आधार से बोला ये सब आपको पहले भी सुना हुआ था या नहीं था, सच सच बोलो, एकदम नया तो कुछ भी नहीं मिला ना। लेकिन जितना बार बार उसको सुन रहे हैं उतना उसकी गहराई में उतर रहे हैं। पता होना और गहराई में जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो ये सब बातें मालूम थी जो भी यहां बताई जा रही, लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उसकी गहराई में उतरते जा रहे हैं। तो ये दिव्य ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि। और अहंकार की शुद्धि, अहंकार माना क्या, मैं और मेरापन, मैं ये हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इस पोजीशन में हूं, मैं सीए हूं, मैं ये, इसी को हम कहते हैं ना, और मेरापन, ये मेरा है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी जगह है, ये मेरा बंगला है। तो इसको बाबा ने क्या कहा, इस मैं और मेरा को क्या कर दो, तेरा कर दो। और तेरा करना माना ही जब हम हर कर्म निमित्त भाव से करते हैं, ये हमारे अहंकार की शुद्धि हो जाती है, कर्म की शुद्धि हो जाती है। तो अगर अहंकार की ही शुद्धि कर ली, कर्म की ही शुद्धि कर ली, और हमें यही पता है कि जो कर्म हम बार बार करेंगे उसी से संस्कार का निर्माण होगा, तो संस्कार शुद्धि नहीं हो जाएगी? संस्कार शुद्धि हो जाएगी। और चित्त शुद्धि माना क्या, चित्त माना क्या, पहले ये बताओ चित्त किसको कहते हैं। क्लासेस में भी ये बात, दादी जानकी की क्लासेस में तो चित्त शब्द बार बार आता था, मुरलियों में भी आता है चित्त शब्द, बहुत रेयर आता है पर आता जरूर है। चित्त क्या है? हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, चित्त और पट बोलते हैं ना, हाँ चित्त और पट। तो चित्त में क्या रहता है? हाँ, चित्त में क्या रहता है, जिसको इंग्लिश में हेड कहते हैं। और जो सिक्के होते हैं, अगर हम अपने पुरानी हिस्ट्री को लेकर चले, तो जो जो भी शासक आया उसने सिक्के पर अपनी छवि अंकित करवाई। तो जहां छवि होती है, छवि माना ही हेड है ना, जहां छवि होती है उसको कहते हैं चित्त, और बाकी वाला पट। सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान मार्ग में भी हम क्या कहते हैं, एक है अंतर्मन और एक है बाह्य मन। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, या बोलते हैं कॉन्शियस माइंड या बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो मन जिसको बोलते हैं हम, वो है बाह्य मन, और चित्त जिसको बोलते हैं वो अंतर्मन। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। आप देखो, कंप्यूटर में आपको कोई भी डेटा फीड करना है तो टाइपराइटर से, वो जो कीबोर्ड रहता है उसको टाइप करते हैं तो स्क्रीन पर आता है, वो अभी स्क्रीन पर है सिर्फ। लेकिन आपने एंटर दबाया, सेव दबाया, तो कहाँ चला गया? हार्ड डिस्क में चला गया। तो मन है स्क्रीन, चित्त है हार्ड डिस्क, जिसको बाबा हमको कहते हैं ना मुरलियों में, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। प्रश्न खड़ा हो जाता है, ऐसे कैसे देखे और फिर नहीं देखे, सुने और नहीं सुने, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब यही है कि हमारी आंखें खुली है, तो बेशक हमारी आंखों के सामने जो आएगा हमको दिखना ही है, परंतु स्क्रीन पे है अभी, उसको एंटर नहीं लगाओ, हार्ड डिस्क में मत जाने दो। मेरे कान खुले हैं, मेरे आमने आसपास जो बातें कर रहे मेरे कानों में आवाज जा रही है, पर अभी स्क्रीन पर है, एंटर नहीं दबाओ, उसको हार्ड डिस्क में नहीं जाने दो। तो ये जो हार्ड डिस्क है, ये जो चित्त है ना, हम क्या कहते हैं, मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय देती है, और उसके अनुसार हम कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, और हर कर्म की आत्मा पर छाप पड़ती है। तो आत्मा पर जो छाप पड़ती है वो किस पे पड़ती है? चित्त पर पड़ती है। हार्ड डिस्क में जाएगा ना जो कुछ भी होगा। तो ये जो अभी गीत सुना ना, मैली हो गई चादर, कौन सी चादर है वो? ये चित्त रूपी चादर है, जिसमें इतने सारे कर्म जो हमने किए, हर कर्म की छाप उस पर है। जब हम आए थे, उतरे थे ऊपर से, ये चित्त रूपी चादर निर्मल थी। गीत में यही कहा, तूने भेजा जग में देखकर निर्मल काया। और यहां पर मैंने उसमें क्या लगाते गया? दाग लगाते गया। तो ये शरीर में तो दाग तो नहीं दिख रहे, मस्त से स्नान करके सब कुछ ये वो लगा के हम तो क्लीन रहते हैं ना, कहते हैं ना क्लीन। फिर कौन सी काया की बात कर रहे हैं उस गीत में? ये वाली काया की बात नहीं है। बेशक इस काया में रहकर कर्म किए, लेकिन जब दाग पड़े हैं वो इसकी बात नहीं है, वो बात इसकी नहीं। और इसकी अगर दाग पड़े भी है तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या यूज करके क्या क्या कर लेते हैं। हाँ, तो दाग जो पड़े हैं वो चित्त पर पड़े हैं, और चित्त शुद्धि, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी चित्त शुद्धि को महत्व देते हैं। चित्त वृत्ति निरोध उसको कहते हैं समाधि की अवस्था, कि जब चित्त की वृत्तियां निरोध माना शांत हो जाएगी, अर्थात ही मौन की बात है, मौन की बात है, तब समाधि वाले स्थिति में पहुंचेंगे कि जिस समाधि में वो अतीन्द्रिय सुख में रमण करता है। तो ये जो चित्त है, जिसको मूल्यों में कभी कभी आता ना विषय वैतरणी नदी, ये चित्त रूपी चादर एक वैतरणी नदी भी कहेंगे, क्योंकि यहां पे बुरे अच्छे सब संस्कारों का जमावड़ा है। तो ये चित्त को पार करके ही जाना पड़ता है आत्मा तक, समझ में आया? और इसीलिए संस्कार शुद्धि जब तक नहीं होगी, तब तक आत्मा के जो गुण हैं वो अनुभव में नहीं आ सकते, क्योंकि मन से जो विचार किया, बुद्धि से जो निर्णय लिया, फिर जो कर्म किया और फिर जो अहम या जो भी आया, वो सारा का सारा चित्त में जा रहा है ना, हार्ड डिस्क में सब कुछ जाएगा ना, वो सब कुछ हार्ड डिस्क में चला गया, चित्त में चला गया। अब वो साफ नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करती हूं। एक बल्ब है, बल्ब चारों ओर क्या होता है, कांच, ट्रांसपेरेंट कांच होता है, और अंदर में वो फिलामेंट होता है, जिस फिलामेंट ने जलना है और उसके जलने से प्रकाश फैलेगा, पहले तो अंदर फैलेगा और वो पारदर्शी कांच को भेद कर बाहर आएगा। लेकिन अगर वो पारदर्शी कांच बाहर से धूल उसके ऊपर जम गई है बहुत, क्या होगा फिर? लाइट आएगी बाहर? बस ये चित्त हमारा आत्मा के सराउंडिंग में ऐसा ही है। जो चित्त है वो आत्मा तो ज्योति बिंदु है ना, उसके सराउंडिंग में ये चित्त की काया है। तो जब हम ऊपर से आए थे, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, और इसलिए आत्मा के सतोगुण उसमें से बाहर निकल निकल कर जीवन में रेडिएट हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमने बाह्य जगत में झांका, बाह्य जगत का इन्फॉर्मेशन अंदर भेजा, तो चित्त की जो पारदर्शिता है वो क्या हो रही है, क्या हो रही है, वो धीरे धीरे उसका परसेंटेज डाउन हो रहा है। बेशक हम दो युगों तक सोल कॉन्शियस स्टेज में थे, तो हमने कोई बुरा कर्म किया नहीं, विकर्म किया नहीं, अकर्म ही थे ना, बाबा ने कहा ना हमको कि उस समय आपके कर्म अकर्म होते हैं। तो बेशक हमने विकर्म नहीं किए, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत से जुड़े तो जरूर थे ना, और वो सारी इंप्रेशन अंदर छप तो रही थी ना, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी डाउन होगी या नहीं होगी, बाहर से कुछ उसमें छप रहा है। और फिर द्वापर युग में आकर तो हमने विकर्म ही शुरू कर दिए, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ गए, उसके बाद तो इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत तेजी से डाउन होने लगी, बहुत तेजी से डाउन होने लगी। और इसीलिए बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं कि दुख भी कोई इतना दुख पहले नहीं था, अभी अभी आके ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाद में आते आते हमारे संस्कार बहुत बॉडी कॉन्शियस जितना ज्यादा हुआ, उतना ज्यादा इस चित्त के ऊपर वो धूल संस्कारों की कहे, विचारों की कहे, सारी उसके ऊपर चढ़ती गई। तो जैसे कहा बल्ब है, बल्ब के अंदर फिलामेंट है, अंदर अभी मैल नहीं है, कांच का जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें मैल नहीं है, कांच का जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें मैल है। तो जो बाहर में जो मैल आ गई है, जब तक मैं उसको साफ नहीं करूं, अंदर तो है ना प्रकाश। इसलिए क्यों बाबा कहते कि बच्चे तुम तो हो ही शांत स्वरूप, मतलब वो आपका नष्ट नहीं हुआ अभी तक, वो आपके पास अभी भी है, लेकिन जिस पारदर्शी चादर से गुजर के उसको बाहर आना होता है वो मैला हो गया है आपका, उसको धोने की जरूरत है। और उसको धोने की जरूरत का मतलब है उस तक पहुंचेंगे तभी तो। देखो कपड़ा अगर मुझे धोना है, भाई बहन जी ये कपड़ा बहुत मैला है, तो अगर मुझे धोना है तो मुझे उस कपड़े तक पहुंचना होगा ना, साबुन जहां लगाना होगा ना। अभी मैं चित्त तक पहुंचूं कैसे, इतना सारा मुख से बोला जा रहा है, इतना सारा बाह्य जगत में फंसे पड़े हैं, तो अंदर जाए तो कब जाए, धुलाई करे तो कब करे, कब करेंगे धुलाई, अंदर जाए मुझे दिखे तो सही दाग, तो हम तो बाहर ही लगे पड़े हैं। देखो एक है जिसे ये टेबल रखी है, इसको समझ लो ये घर की दहलीज है, घर का मेन गेट होता है ना, इस तरफ घर है और इस तरफ बाहर की दुनिया है, ये घर की दहलीज है, इधर घर है अंदर और बाहर बाह्य दुनिया है। अब घर की दहलीज पे आप खड़े हो गए, बाहर आने जाने वालों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी बातें, उनसे बातें कर रहे हैं, अंदर जो बैठे हैं वो आपको आवाज दे रहे हैं, आपको आवाज सुनाई देगी, देगी नहीं। और आपका मुख चूंकि इस तरफ है, घर में भी लोग बैठे हैं लेकिन चूंकि मुख इस तरफ है तो आपको दिखाई देगा वो व्यक्ति, जब तक कि दहलीज पर खड़े होकर अपने मुख को ऐसे टर्न नहीं कर ले हम। तो मन बुद्धि दहलीज पर बैठे हैं, ये इंद्रियां बाह्य जगत, इससे हम बाहर देख रहे हैं, और आत्मा अंतर, ऐसे ही बोलते ना चलो अंतर जगत की यात्रा करें, क्या बोलते हम, बाह्य जगत से अपना मन उठाकर अंतर जगत में यात्रा करने, कमेंट्रियों में ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो क्या था वो अंतर जगत और बाह्य जगत, कि मन बुद्धि दहलीज पर है और इंद्रियों के और उनका मुख इस तरफ है, तभी कहा कि बाह्य मुखी से अभी क्या हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, तभी तो अंदर जाके क्या चल रहा है, क्या आवाज आ रही है, क्या सफाई की जरूरत है, क्या काम की जरूरत है, तब पता पड़ेगा ना, अंदर जा ही नहीं रहे हैं। तभी कहा मौन की पहली शर्त, अंतर्मुखी हो जाओ, जब टर्न करोगे इधर से इधर टर्न करोगे तभी तो अंदर वाले घर में कब देख सकोगे सुन सकोगे। तो अंतर्मुखता की गुफा में जाना है, और जब अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश करेंगे तो ही तो अंदर का दिखाई देगा, तो ही तो अंदर की आवाज सुनाई देगी, तो ही तो अंदर बांस कहां से आ रही है वो समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बाहर से पूरा स्वच्छ है, पता नहीं बांस कहां से आ रही है, लगता है चूहा कहीं मरा है, और वो चूहा अगर किसी कबाड़ के पीछे या कहीं हो तो कितना मुश्किल होता है, पर लगता तो है ना कि होगा बांस यहां से आ रही है तो यही कहीं होगा। अब अंदर से ही तो दर्द उठ रहा है, अंदर से ही तो घृणा आ रही है, अंदर से ही तो अशक्त फील कर रहे हैं, तो अंदर ही कहीं देखना पड़ेगा ना हमको, लेकिन अंदर जाके तब ना। और इसीलिए मौन का महत्व है। तो चलो यहां पर आप आए हो रिफ्रेश होने, एक बेस तैयार करने की, आखिर भी जो हमारा लक्ष्य है नरसिंह नारायण बनने का, उसको अचीव करने के लिए कौन से स्टेप से हमें गुजरना है। चलो उतना तो फाउंडेशन पक्का कर रहे हैं आप। तो ये मौन जो यहाँ पे हमने आपको कहा, लेकिन जैसे पहले शेयर किया ना, किसी का किस प्रकार से, किसी का किस प्रकार से मौन भंग होता रहा, चलो संगठन है हो जाता है। लेकिन अब ये जो भट्टी है, ये भट्टी आपको अपने आप जहां पर रहते हो अपने साथ करनी है कि मुझे एक दिन दो दिन सप्ताह में निकालना है, या एक मास में तीन दिन या दो मास में तीन दिन की, जहां मैं अंदर झांकूं, अंदर झांकूंगी तो उस मैली चादर को मैं साफ कर सकूंगी, नहीं तो नहीं होगी वो साफ। और इसी बात को समझाने के लिए भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलाना, वो अंदर की बातें थी, वो अंदर की बातें बताने के लिए उसको स्टोरी में गढ़ा गया, परंतु वो स्टोरी प्रतीकात्मक होने के कारण वो हम उन प्रतीकों को समझ नहीं पाए, और फिर हमने कहा पता नहीं कुछ भी मनगढ़ंत भरा हुआ है। लेकिन अगर बाबा का ज्ञान होने के बाद आप उसको समझेंगे ना, बहुत ईजी लगेगा। जैसे आज हिंदू कैलेंडर को अगर देखेंगे तो हिंदू कैलेंडर में सिर्फ वार नहीं पता चलता है, सिर्फ तारीख नहीं पता चलती, तिथि भी पता चलती है। तो आज के कैलेंडर में आपको तिथि देखने को मिलेगी, आज अमावस्या है, और हिंदू कैलेंडर में माघ का मास है। तो क्योंकि हर मास में अमावस्या पड़ती है, तो उसको कहेंगे माघ की अमावस्या या माघी अमावस्या, और इस माघी अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। ये अमावस्या वो अमावस्या है जो आने वाली शिवरात्रि के एक मास पहले वाली। शिवरात्रि हम जानते हैं ना, शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ कि जब भगवान घोर अंधियारा होने से पहले आते हैं, तो एक महीना पहले वाली। तो भक्ति मार्ग में भी इस अमावस्या को बहुत बाकी वाली अमावस्या से बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और इस अमावस्या में मौन व्रत धारण करते हैं, और मौन व्रत धारण करके वो कथा आती है कि जिसमें कहते हैं, और अगर ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ गई तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं, और इसका जो फल है सहस्त्रों गोदान मतलब गऊओं का दान करने के बराबर है। मतलब सोमवती अमावस्या का फल बहुत बहुत अन्य अमावस्याओं से बहुत ज्यादा है। तो इसमें एक कहानी आती है, उस कहानी को पहले हम सुनेंगे और फिर उसका हम आध्यात्मिक विवेचन करेंगे, ठीक है। कहानी ऐसे आती है कि कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता है, उसके सात बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी का नाम गुणवती है और पत्नी है धनवती। होता क्या है, सातों बेटों की शादी हो गई है लेकिन बेटी की अभी शादी नहीं हुई है। तो उनके घर में भिक्षुक आता है, वो आता है तो ये बहुएं जो है उनको दान दक्षिणा जो देना होता है करती है, और उनको सौभाग्यवती भव का वो वरदान देता है। और ये जो गुणवती है, ये इतना दान दक्षिणा करने में इसमें कोई रुचि नहीं होती। एक दिन माँ खुद कहती, उठ बेटा जा जाके दान कर, भिक्षुक द्वार पे आया है, जाती है। लेकिन इसको जो वर मिलता है उनसे डिफरेंट होता है, इसको वर मिलता है धर्मवती भव, सदाचार को जीवन में लाओ। तो ये जाके माँ को कहती, माँ माँ मुझे तो अलग वाला वरदान मिला है। और जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो वो लोग तो विचार कर रहे हैं इसकी शादी होनी चाहिए, इसको भी वही बहन सौभाग्यवती वाला वरदान मिलना चाहिए। तो माँ जाके फिर से पूछती है कि बाकी सबको तो आप सौभाग्यवती का वरदान दिया है, लेकिन इस बेटी को आप सिर्फ धर्मवती का वरदान क्यों देते हो, सौभाग्यवती का क्यों नहीं देते हो? वो कहता है, सौभाग्यवती का वर देना माना वर मिलेगा ना, लेकिन कहता है इसके हाथों में, इसके माथे पे तो वैधव्य योग लिखा है। क्या लिखा है? वैधव्य योग, और इसलिए इसको धर्मवती का ही वरदान है। तो वो कहती, अच्छा अगर ऐसा ही योग इसके कुंडली में लिखा है, इसके हाथों में या माथे पर, तो इसका उपाय भी तो कुछ होगा ना। तो कहते हैं हाँ, इसका उपाय है। और उपाय क्या है? कि ये सोमवती अमावस्या का व्रत रखे, सोना धोबन की पूजा करे। अब इसमें सोना धोबिन वो किधर रहती है पूछा, तो कहा सोना धोबिन तो समुन्दर पार रहती है और वो कहीं जाती नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका बेटी का वैधव्य योग मिटाना है तो ये सोमा धोबिन की जब सेवा करेगी और वो सेवा से जब प्रसन्न होगी, वो जब इसको कहेगी, वरदान देगी, तब इसका वो सौभाग्य वाला जीवन चल सकता है। तो फिर बात आई कि अब वहां पहुंचे कैसे। तो पिता ने कहा सभी बच्चों को कि बेटों देखो ऐसा ऐसा है सोमा धोबिन के पास, अगर आप सचमुच मेरे बेटे हो, मेरे आज्ञाकारी हो, तो आप क्या करो, सोमा धोबिन के पास उसका पता करके वहां जाना होगा। छह बेटे सीधा साफ मना कर देते हैं, कहते हैं आपको बेटी में ना बहुत आसक्ति है और इसलिए उसके लिए हमको सात समंदर, समझते हो सात समंदर पार करना, माना हम कैसे करेंगे ये सब। तो इतने में वो पिता कहता है, पुत्र होते हुए भी जैसे कि मैं पुत्रहीन हूं। तब एक छोटा बेटा कहता है, नहीं पापा मैं हूं ना, मैं जाऊंगा। फिर ये दोनों भाई बहन जाते हैं समंदर पार करके, सोमा के पास पहुंचते हैं और उसका सुबह सुबह जाके उनको पता भी न चले उसके घर की लीपा पोती साफ सफाई करते हैं। सोमा धोबिन को वंडर होने लगता है, आजकल कौन इतने जल्दी सफाई कर रहा है, क्योंकि उसके भी साथ बैठे थे, उसकी भी बहुएं थी लेकिन काम होता नहीं था। तो उसको लगा आजकल मेरी बहुएं थोड़ा सा संस्कारित हो गई है। तो पूछती है, बहू ये घर का काम सुबह सुबह कौन निपटा के जाता है? तो वो कहते हैं, हम ही तो घर में रहते हैं, हम ही करेंगे और कौन करेंगे, मतलब छूट बोल देते हैं। तो सोमा धोबिन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि अभी तक तो नहीं कर रही थी ना। तो वो सचेत होके देखती है, रात भर जागरण करती है और उसको पता चलता है ये दो भाई बहन आके सफाई करते हैं। तो वो उनको पूछती है, आप कौन हो और क्यों है? तो वो बताते हैं, वो जो भाई बताता है पूरी कहानी सुना देता है कि मेरी बहन का वैधव्य योग, जो भी स्टोरी है, और इसलिए कहा गया है तो हम इसलिए यहाँ पर आते हैं, हम ब्राह्मण हैं। वो कहती, आप ब्राह्मण और मैं धोबन जाती और मेरे घर में आकर ऐसा नीच काम, मतलब सफाई करना तो छोटा काम होता है ना, तो मुझ पर पाप चढ़ेगा। नहीं नहीं आप ये सेवा नहीं कर सकते हैं, हाँ मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो मदद तो यही थी कि आप चलो हमारे यहाँ ताकि इसकी शादी हो जाए। प्रसन्न होकर आ जाती है, लड़का ढूंढ लेते हैं, शादी होती है उसकी, पति मर जाता है, वैधव्य योग लिखा था ना, उसने कहा था कि जब सप्तपदी चलेगी, जब भावर चलेंगे उसी समय उसकी मृत्यु होने वाली है। तो ये अभी सोमा धोबिन तो आई है ना साथ में, वो उसी वक्त उसको अपना सिंदूर देती है और वो ऐसे उठ जाता है जैसे मानो सिर्फ सोया ही हुआ था, उठ जाता है। अब आइए इसका आध्यात्मिक विवेचन करते हैं। ब्राह्मण कौन? उसका नाम था देवस्वामी। हम ही आत्मा है जो वर्तमान में क्या बने हैं, ब्राह्मण, फ्यूचर में क्या बनेंगे, देव बनेंगे। तो ये कहानी किसी और की नहीं है, ये हमारी आत्मा की कहानी है, ठीक है। अब इसको 7 बेटे थे, एक बेटी थी। अब 7 बेटे कौन सी गिनती की है उन्होंने, कौन सी गिनती किए हैं? तो 5 इंद्रियां, पूरा एक शरीर, 6 और मन, हो गए 7 बेटे। बुद्धि को गिनती किया बेटी, ठीक है। और जब बात आई कि बेटी को लेके जाना है तो 6ों ने जवाब दिया, और सचमुच इंद्रियां अंदर कैसे जाएगी, अंतर जगत में ये इंद्रियां चलेगी क्या, इन आंखों से दिखेगी क्या आत्मा? अंतर जगत में ये इंद्रियां और शरीर नहीं जा सकता है, मन जा सकता है। इसलिए वो छोटा बेटा, उसको छोटा का सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म के लिए छोटा बोल दिया। और चूंकि मन का स्वामी, मन के ऊपर है बुद्धि, तो कहा कि वो छोटा भाई है गुणवती का। समझ में आई बात? तो दोनों है भाई बहन, वो असल में कौन है, मन और बुद्धि है। अब इस बुद्धि को, क्योंकि इसका शादी नहीं जम रही, वैधव्य योग लिखा है, इसकी शादी नहीं जमने का अर्थ क्या है, क्योंकि वैधव्य योग है इसका, इसका मतलब यह है बुद्धि का स्वामी विवेक है। बुद्धि का स्वामी विवेक है तो उसका वर तो वही हो सकता है ना, और कौन हो सकता है? विवेक ही बुद्धि का वर हो सकता है। लेकिन विवेक माना क्या, आत्मा का जो गुण है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, यही विवेक है। लेकिन जैसे कहा ना, आत्मा वो फिलामेंट बल्ब चित्त, अब वहां तो पूरी चादर मैली हो गई है। जैसे आसमान में सूर्य है और हम यहां है, तो हम सूर्य को, सूर्य ऊपर ही है भले, लेकिन उसकी रोशनी हम तक पहुंच रही है। लेकिन काली घटाएं अगर आ जाए आसमान में, सूर्य होते हुए भी सूर्य का प्रकाश एहसास नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वो घटाएं जब थोड़ी इधर उधर हो जाए तो बीच में से एक आध किरण आ जाएगी, लेकिन फिर घटाएं आपस में मिल जाए फिर किरण। तो आज हमारे साथ यही हो रहा है, कभी विवेक की आवाज आ जाती है, कभी नहीं आती है। तो बुद्धि का स्वामी विवेक कभी है साथ में, कभी नहीं है। तो इसको वैधव्य ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, इसको वैधव्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो सच में अगर आप इसका वैधव्य योग मिटाना चाहते हो तो क्या कहा उसको, सोमा धोबिन की सेवा करनी पड़ेगी। और ये सोमा धोबिन कौन है, ये चित्त है। जिस चित्त में पुराने पुराने संस्कार, आसुरी संस्कार, मायावी संस्कार, बुरे संस्कार ने मैला कर रखा है, जब इसको हम साफ करें, तो अंदर तो है ही ना, फिलामेंट तो जल ही रहा है ना। बाबा ने कहा है ना, तुम्हारे साथ ही शांति, तुम्हारे साथ है, कहीं गई नहीं है वो, पर बाहर नहीं आ रही है वो। वो बाहर तब आएगी जब वो चादर को हम साफ करेंगे। लेकिन चादर तक पहुंचने के लिए क्या बोला, सोमा धोबिन तक पहुंचने के लिए 7 समंदर पार। तो मौन की आवश्यकता है या नहीं है? सिर्फ बाह्य जगत, 7 समंदर पार का इतना ही मतलब था, बाह्य जगत से अंतर जगत में जब तक नहीं जाएंगे, सोमा धोबिन से मुलाकात ही नहीं होगी। और मुलाकात ही नहीं होगी तो वहां जो मैले कपड़े पड़े हैं उसको धोंगे कब? फिर धोबिन माना जहां सब मैले कपड़े छोड़ देते हैं। तो हम भी जो कर्म करते हैं माया के वश, रावण के वश, वो सारे संस्कार कहां जा रहे हैं, उस चित्त पर। उसको सोमा नाम क्यों दिया, उस चित्त को सोमा महात्मा धोबिन क्यों बोला उसको? क्योंकि उसको कहा कि वो शिव की पुजारिन थी, सोमरस पी रही थी, तो डेफिनेटली जिसे कहा बल्ब कहा तो अंदर वाले हिस्से में तो उसको मिल रहा है ना, अंदर वाले हिस्से में वो आत्मा से उसको शांति, प्रेम, खुशी, जो हमारे सात गुण है उसके रेस, उसके वाइब्रेशन उसको मिल रहे हैं, लेकिन इधर उसके पास मैले कपड़े आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए उसको नाम दिया सोमा। तो सोमा धोबिन के पास कब जाएंगे? हाँ, जब तक मौन नहीं रखेंगे संभव नहीं है, और जब तक नहीं जाएंगे जो संस्कार परिवर्तन की बात है वो नहीं हो सकते हैं। तो भक्ति में भी क्या करते हैं? मौन व्रत धारण करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। मतलब क्या बता रहे हैं ये कथा? क्या बता रही कथा? विष्णु की पूजा करना है मतलब मध्याजी भव बनना है, शिव की पूजा करना है मतलब मनमना भव बनना है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ माना कल्प वृक्ष के ज्ञान का स्मरण करना है, उसको चारों ओर फेरी लगाना है, वो धागा बांधते हैं माना सदर्शन चक्र घुमाना है, मौन में रहना है, इतना जब करेंगे तो सोना धोबिन से मुलाकात हो जाएगी। सोना धोबिन से मुलाकात होते का उसकी सेवा करना जाके। तो चित्त की सेवा तो यही है ना कि उसके ऊपर मैल जो चढ़ी है उसको साफ करना। अब ये मैल कौन सी, तो कैसे मैं साफ करूं? तो इससे पहले जो क्लासेस हो गई उसमें बहुत अच्छी अच्छी आपको बातें बताई गई। कल भी क्या बताया सूर्य भाई ने? क्षमा करो भी और मांगो भी। वो परमात्मा, हम जो पतित हो गए, इतना उससे विमुख हो गए थे, फिर भी उसने हमें ऊपर उठाया, फिर भी हमें गले लगाया, तुम जो हो जैसे हो मेरे बच्चे हो, क्योंकि हमने उसको स्वीकार किया। वो हमको राइट हैंड बना के चल रहा है। अब ये सारे कर्तव्य जो हमारे प्रति कर रहा है हम करें औरों के प्रति, तब जाके ये मैली चादर क्या होगी? साफ होगी। जो खुशहाल जिनका जीवन है उनसे मित्रता रखें, जिनके जीवन में सफरिंग्स है उनकी सफरिंग मिटाने में उनको मदद करें। नहीं तो होता क्या है, जिनके जीवन में सफरिंग है हम कहते उनका पाप कर्म उनके साथ, और जिनका जीवन खुशहाल है फिर उनके साथ ईर्ष्या, अच्छा मेरे से आगे है ये। तो ये राग और द्वेष से ऊपर उठना है, तो अंदर में मौन में जाके क्या करना है? अंदर में चेकिंग करना है, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे हमको कई बार लगता है हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब बारीकी से चेकिंग करते हैं ना तब पता चलता है कि ये कमी कमजोरी अभी भी मेरे में है। और कमी कमजोरी है मतलब क्या है? मतलब चित्त रूपी चादर मैली पड़ी है, और जब तक वो मैली पड़ी रहेगी अंदर वाला प्रकाश बाहर आएगा नहीं, और जब अंदर वाला प्रकाश बाहर नहीं आएगा मतलब, क्योंकि देखो योग की कंडीशन क्या है, क्योंकि भक्ति में भी भगवान को याद तो किया पर हम कनेक्ट नहीं हो पाए, तो हम सेवन डेज कोर्स में भी क्या बताते हैं, क्योंकि हमने स्वयं को आत्म स्वरूप में देखा ही नहीं, हमने स्वयं को शांत स्वरूप में स्टेबलाइज किया ही नहीं, हमने अपने आप को प्रेम स्वरूप में स्टेबलाइज किया ही नहीं, तो हम उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि कनेक्ट होने के लिए दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब मुझे आत्मा ही नहीं दिख रही है, कई बार प्रश्न आता ना बेटी योग कैसे करें, आत्मा देखो भाई ज्योति, बहन जी मेरे को ज्योति दिखती नहीं है। तो चादर इतनी मैली है ना, चादर इतनी मैली है बेन जी, वो शांति का प्रकंपन मुझे फील ही नहीं होता है, चादर मैली है ना। इसलिए देखो बाबा की अगर मुरलियां पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो बाबा की मुरलियों में एक बात आती है कि बाबा कहते कई मना, बाबा के बच्चे कहते बाबा हमको तो इतनी ज्ञान की गहराई नहीं समझती है, हमको योग भी इतना नहीं समझता है, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, फिर भी एक काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये कहते ना बाबा, इसी कर दिया। अगर कोई कहता है मुझे ज्ञान की गहराई में नहीं जाने आता है, योग की गहराई में नहीं जाने आता, बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, बस एक मन में गांठ पक्की कर लो, मुझे सबको दुआएं देनी है और सबसे दुआएं लेनी है। तो जब ये गांठ पक्की कर ली, माना माया से तुम परे हो ही गए, तो मेरा हर कर्म माया वाला नहीं होगा, अभी डिवाइन होगा। तो जैसे कहा कि मैली चादर को धोना है, तो जैसे कपड़े को भी क्या होता है, कोई दाग लगता है ना, तो स्पेशल होता है, ये दाग इससे निकलेगा, ये दाग इससे निकलेगा, ऐसे होता है ना। तब अगर अंदर क्रोध का दाग है तो शांति से ही तो मिटेगा। हाँ, तो जब दुआ देना वाला क्या होगा, शांत रहेंगे, सहनशील रहेंगे, यही तो मतलब होता है ना उसका दुआ देना, कि परिस्थिति कुछ ऐसी आई है गुस्से वाली, लेकिन मुझे बाबा ने कहा ऐसी परिस्थिति में भी दुआ देना है, तो मतलब अपने आप को शांत रखना है, सहनशील रहना है। तो क्रोध का दाग मिट गया, बाबा कहते ना लक्ष्य रूपी सोप साबुन, तो इसके जो दाग है ना, इसके दागों को मिटाने का साबुन चाहिए ना, तो ये हमारे श्रेष्ठ जो संकल्प होंगे, जो भाव होगा दुआ देने का, वही क्या करेगा, इस चादर के दागों को धो डालेगा। और चादर जब पहले आए थे हम, निर्मल काया बोला ना, देखकर भेजा जग में तूने निर्मल काया, और मैंने आकर उसमें दाग लगाया, अब मुझे शर्म आती है, मैं तेरे पास कैसे आऊं। शर्म माना ही हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे ना, तो बाबा ने ज्ञान आकर दिया, अभी हमारे लिए कनेक्ट होना, ज्ञान समझ में आया तो और कुछ न करें, पहला अटेंशन दुआएं देना है और दुआएं लेना है। तो चित्त रूपी चादर धीरे धीरे क्या होगी, साफ होती जाएगी, अंदर तो बल्ब जल रहा है, उसमें से बाहर आएगा, मैं खुद भी अनुभव करूंगी और मेरे से रेडिएट होते हुए सबके पास पहुंचेगा। ये है मौन और मौनी अमावस्या। क्लियर हुआ सब? ओके, ओम शांति।